दीवा इस वक्त आर्यांश की गोद में बैठी हुई थी। दीवा बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आई थी, जिसकी वजह से आर्यांश उससे काफी गुस्सा था। आर्यांश किस तरह से बात कर रहा था, उससे दीवा को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि ना जाने अगले ही पल आर्यांश क्या कर देगा। आर्यांश ने दीवा के बालों को उसके कानों के पीछे किया और काफी प्यार से कहा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि नानी की जरूरत नहीं है? तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। दीवा और आर्यांश की अब तक शादी नहीं हुई थी, फिर भी न जाने क्यों वो उसे बार बार अपनी वाइफ कहकर बुलाता था। उसका बिहेवियर दीवा को किसी साइकोपैथ की तरह नजर आता था। दीवा ने नजर उठाकर आर्यांश की आंखों में देखा और कहा, तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि हमारी शादी नहीं हुई है? तुम्हें क्या डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो कभी गुस्से से पेश आते हो तो कभी ओवर स्वीट बन जाते हो? मैंने तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया है, तुम इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम क्यों दे रही हो? मुझे तुम्हारी परवाह है, बस तुम मुझे गुस्सा दिला देती हो, आर्यांश ने जवाब दिया। लेकिन तुम, दीवा उलझन भरे शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी कि तभी आर्यांश ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद से उठाया और खुद भी खड़ा हो गया। अचानक आर्यांश ने दीवा को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, आज रात हम साथ सोने वाले हैं। दीवा ओगे कुछ नहीं कह पाई। वो खुशी मना रही थी कि कल रात आर्यांश के साथ कोई और औरत थी, जिस वजह से वो उसके करीब नहीं आया था। वो बेवकूफ थी जो उसने ये सोचा कि कल रात वो उसके करीब नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी आर्यांश ने कहा, मैंने तुम्हें अपने लिए सिलेक्ट किया है तो तुम्हें वाइज होना चाहिए, मुझे बेवकूफ लड़कियां पसंद नहीं हैं। आर्यांश का इशारा साफ था, दीवा को बिना उसके जाहिर किए ही उसकी फीलिंग्स को समझना होगा। वो बिल्कुल शांति से आर्यांश उसे अपने कमरे में ले आया था। उसने दीवा को लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया था। वो रात दीवा के लिए थोड़ी दर्द भरी साबित हुई, जहां आर्यांश अपनी डिजायर्स पूरी करने में लगा था। अगली सुबह बारिश की आवाज़ सुनकर दीवा की नींद टूटी, तो आर्यांश उसके पास नहीं था, ना जाने वो कब का चला गया था। आर्यांश को वहां ना देखकर दीवा ने राहत की सांस ली। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कल रात की वजह से उसके शरीर में दर्द हो रहा था। दीवा ने अपना सिर पकड़ लिया, तभी उसकी नज़र बेड साइड पर रखे एक नोट पर गई। वो नोट आर्यांश ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, तुम्हें हॉस्पिटल के अलावा कहीं और जाने की इजाज़त नहीं है, हाँ वीकेंड पर अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हो। आर्यांश ने उसे उसके घर जाने की इजाज़त दे दी थी। ये देखकर दीवा खुशी से उछल पड़ी। वो मन ही मन बोली, चलो इसने मुझे घर जाने की इजाज़त तो दी। आर्यांश ने घर जाने की इजाज़त दे दी थी, ऊपर से वो घर पर भी नहीं था। इस बात से दीवा बहुत खुश थी। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंची, तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक शानदार नाश्ता लगा हुआ था। दीवा ने उसे देखकर हैरानी से खुद से कहा, क्या यहाँ कोई भूत है जिसने ये सब बनाया होगा? मिस गोयनका अब जाग गई? किचन की तरफ से एक औरत की मीठी आवाज़ आई। आर्यांश ने रात को बताया था कि एक नानी आने वाली है, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी, दीवा मन ही मन बोली। दीवा उनसे मिलने के लिए किचन एरिया की तरफ गई, वो भी उसकी तरफ ही आ रही थी। दीवा ने देखा उसके सामने एक लगभग 45 साल की औरत खड़ी थी, जो दिखने में काफ़ी स्वीट नज़र आ रही थी। वो दीवा के आगे आई और बोली, गुड मॉर्निंग मिस गोयनका, मैं आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखूंगी, और आप मुझे सुमन माँ कहकर बुला सकती हैं। मिस्टर कपूर भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। एक ही मुलाकात में दीवा को वो औरत काफ़ी अच्छी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे काफ़ी पहले से जानती हूँ। वो तो ठीक है सुमन माँ, लेकिन आप मुझे मिस गोयनका नहीं बल्कि दीवा कहकर बुलाएंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, दीवा ने मुस्कुराकर कहा। अरे नहीं मिस गोयनका, मिस्टर कपूर को पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है, और साथ ही सख्त हिदायत दी है कि मैं आपके साथ प्रोफेशनल रिश्ता ही रखूं, सुमन माँ ने विनम्रता से कहा। वो तब सोचेंगे ना जब मिस्टर कपूर यहाँ आ जाएंगे, अभी वो यहाँ नहीं है तो तब तक तो आप मुझे दीवा कहकर बुला सकती है ना, प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा, दीवा बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली। अच्छा ठीक है, अब आप नाश्ता कर लीजिए, आपको हॉस्पिटल भी जाना होगा, सुमन माँ ने कहा और फिर दीवा को डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। दीवा ने नाश्ता करते हुए उनके साथ अच्छा टाइम बिताया, फिर वो अस्पताल के लिए निकल गई थी। वहाँ उसकी एक सर्जरी थी। सर्जरी काफ़ी लंबी चली और उसके बाद दीवा बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो अपने कैबिन में उतरे हुए चेहरे के साथ एक केस फाइल के पेज बदल रही थी। ये डॉक्टर का काम इतना मुश्किल क्यों होता है? इससे अच्छा मैं पियानो में अपना करियर बना लेती। बचपन से मैं एक पियानो प्लेयर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर का प्रोफेशन भी काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप किसी की जान बचाते हो, दीवा ने थके हुए स्वर में कहा। दीवा को अभी बहुत काम करना था। उसका मन कर रहा था कि अभी उसे एक बिस्तर मिल जाए और वो आराम से उस पर कई घंटे की नींद ले। दीवा खुली आंखों से सोने के मीठे ख्वाब देख रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक औरत की कड़क आवाज़ आई।
मिस दीवा गोयंका, आपको अभी इंपीरियल हाई स्कूल आना पड़ेगा। आपकी कजिन इनाया गोयंका ने अपने कुछ क्लासमेट के साथ काफी झगड़ा किया है। इस बीच उसने मारपीट करने की भी कोशिश की थी। मैं बस अभी पहुंच रही हूँ, दीवा ने हड़बड़ाकर कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कजिन इनाया किसी के साथ ऐसा बिहेव कर सकती है। दीवा जल्दी से इंपीरियल हाई स्कूल जाने के लिए निकली। वो वहां पहुंची तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। उसने भी वहीं से स्टडी की थी और स्कूल काफी बदल गया था। इनाया स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वहीं हॉस्टल में रहती थी। उसने इनाया को इधर उधर देखा, वो कहीं नजर नहीं आई तो वो कैंटीन एरिया में चली गई। वहां कुछ लड़कियों का ग्रुप बातें कर रहा था। उनकी बातें सुनकर दीवा के कदम वहीं रुक गए थे। तुमने सुना इनाया के बारे में? वो हमारे स्कूल की सबसे घटिया लड़की है। उसके डैड जेल में है क्योंकि उन्होंने गैम्बलिंग में काफी सारे पैसे उधार लिए थे और करोड़ों का कर्ज होने की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई, एक लड़की ने गुस्से में कहा। उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो सब उसे हवा में उठाकर रखते हैं, लेकिन आज लड़ाई के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसे कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं देगा और वो अपनी असली जगह पहुंच जाएगी, दूसरी लड़की ने कहा। उनकी बातें सुनकर दीवा गुस्से से भर उठी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि इनाया ने उन लोगों से झगड़ा क्यों किया होगा। स्कूल में अक्सर यही होता था, किसी बच्चे को अगर बुरा भला कहने लग जाते थे तो सभी स्टूडेंट्स उसके पीछे पड़ जाते थे। यही इनाया के साथ हो रहा था। दीवा ये अपनी बहन के साथ हरगिज नहीं होने दे सकती थी। दीवा ने अपने कदम उस ग्रुप की तरफ बढ़ाए। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर एक लड़की घबराकर खड़ी हुई और बोली, मिस आपको कुछ चाहिए? तुम लोग यहाँ किसकी बातें कर रही थी और तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? दीवा ने उसे घूरते हुए पूछा। उसका पर्सनैलिटी इस वक्त काफी दमदार लग रही थी। ओ हेलो मैडम, आप गलत जगह पर आ गई हैं, और आप है कौन जो हमारी बात के बीच में दखल दे रही हैं? दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए दीवा से कहा, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ और तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरी बहन है। आगे से तुमने उसके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, दीवा ने उसे मुट्ठी बनाकर दिखाते हुए कहा।
दीवा के धमकाने पर वो लड़की कुछ कदम दूर हो गई। वो दीवा को घूरते हुए बोली, अब समझ आ रहा है आपकी बहन ऐसी क्यों है? उसने जरूर आपसे ही ये सब सीखा होगा। वो आपके ही घर में रहती होगी, उसके मॉम डैड तो है नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि उसके मॉम डैड नहीं है? हाँ, ये बात अलग है कि वो यहाँ नहीं, बाहर रहते हैं। उसे अकेला मत समझना, आई वॉन्ट यू। आगे से तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दीवा बगैर सोचे समझे उन्हें धमका रही थी। जब वो उनकी बात कर रही थी तो पीछे से उसकी बहन इनाया की आवाज़ आई। वो लगभग 16 साल की थी। उसने कहा, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीवा जल्दी से उसकी तरफ पलटी और फिक्र जताते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ बदतमीज़ लोग मुझे उल्टा सीधा कह रहे थे तो मैंने गुस्से में उन्हें थप्पड़ लगा दिया ताकि आगे से वो ऐसी हरकत ना करें, इनाया ने जवाब दिया। बोलते हुए उसने उस लड़की की तरफ घूरकर देखा जो थोड़ी देर पहले दीवा से बहस कर रही थी। इनाया की उन्हीं के साथ लड़ाई हुई थी। इनाया ने जो भी किया उसके बाद दीवा ने उसे दिलासा देने के बजाय शाबाशी देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। मतलब साफ था, दीवा इनाया का साथ दे रही थी। ये देखकर अचानक उस लड़की के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना चेहरा मासूम सा बनाया और पीछे खड़े अपने क्लास टीचर से रोते हुए कहा, आपने देखा सर, मैं सही कह रही थी, इस लड़की ने मुझे मारा, वो भी बेवजह, और उसकी बहन अब इसका साथ दे रही है। अब तो आपको सबूत मिल गए हैं ना, आप इसे स्कूल से निकाल दीजिए और साथ ही इसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख दीजिएगा ताकि आगे से किसी स्कूल में एडमिशन ना मिले। दीवा की आंखें बड़ी हो गई। वो यहाँ इनाया की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन जाने अनजाने में उसने इनाया के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी थी। आज दो चैप्टर का बोला था सो दे दिए।